ओम शांति। आज 12 अगस्त 2023 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे 21 जन्मों के लिए पुण्य का खाता जमा करना है। 21 जन्मों के लिए पुण्य का खाता जमा करना है। योग बल से पापों के खाते को भस्म करना है। इसके लिए अंतर्मुखी बनो। इसके लिए क्या बनो? अंतर्मुखी। क्या होता है अंतर्मुखी? केवल स्वयं आत्मा को ही चेक करना, देखो नहीं मैंने उसके साथ क्या किया, मैंने ऐसे करना था, देख के हिसाब से नहीं, स्वयं आत्मा को चेक करना है बाबा की श्रीमत पर कि मैंने कितना राइट किया, कितना रोंग किया, और अपनी उन गलतियों को रिमूव करने के लिए, दूर करने के लिए अपने आप को बैठकर समझ। ये है अंतर्मुखी बनने। आज तक दुनिया अंतर्मुखी बनने के लिए समझती थी देह के हिसाब से। उसने मेरे साथ ऐसे किया, मैंने भी उसके साथ ऐसे किया। वो आत्मा के हिसाब से नहीं सोचती थी, बाबा की श्रीमत के हिसाब से नहीं सोचती थी, वो दुनियावी ज्ञान के हिसाब से, दुनियावी समझ के हिसाब से, दुनियावी कानून के हिसाब से अपने आप को चेक कर। बाबा हमें समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूं और मुझे स्वयं को चेक करना है देह और देह के संबंधों से ऊपर उठकर। प्रश्न, किस श्रीमत का पालन करने से वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ सहज हो जाएगा? मतलब बाबा ने हमें बहुत सारी सलाहें दी, श्रीमत दिए, उनमें से हम कौन सी श्रीमत का पालन करें, कौन सी श्रीमत का हम पालन करें जिससे हमें वाणी से परे माना निर्वाण धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम जाने का पुरुषार्थ सहज हो जाएगा? उत्तर, श्रीमत कहती है बच्चे अंतर्मुखी हो जाओ। बाबा की श्रीमत क्या कहती है? अंतर्मुखी हो जाओ, बाहर से कुछ भी नहीं बोलो, अपने आप को चेक करो और अपने आप को समझो। इस श्रीमत को पालन करेंगे तो सहज ही वाणी से परे जा सकते, तो सहज ही वाणी से परे जा सकेंगे। जितना याद करेंगे स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, उतना कमाई जमा होती जाएगी। जितना स्वदर्शन चक्र फिराएंगे उतना कमाई जमा होती जाएगी। इसका मतलब समझ में आया? सुदर्शन चक्र फिराने से कमाई कैसे होती? हमने अपनी बुराइयों का गला काट दिया जो हमें श्रेष्ठ भाग्य बनाने में रुकावट डाल रहे। तो अब दूसरी बात, बाबा ने कल हमने देखा, बाबा कहते सुदर्शन चक्रधारी बनना माना खाली अपनी बुराइयों का गला काटना नहीं, हमने अपनी बुराइयों का गला काट दिया इतना नहीं। अब बाबा ने समझा कि बच्चों को समझ में आ गया है सुदर्शन चक्र फिराना माना अपनी बुराइयों का गला काटना। कल बाबा ने समझाया कि सुदर्शन चक्र फिराना माना अपनी चारों तरफ लाइट फैलाना, ज्ञान और योग से पालना करना, ताकि वो आपके अनुभव से अपनी बुराइयों का गला भी काटे। वो अपनी बुराइयों का गला काटेंगे तब तो आप चक्रवर्ती राजा बनेंगे। चक्रवर्ती राजा क्या होता है? जिसके आगे और छोटे छोटे राजा होते हैं, वो राजाओं का राजा होता है। तो जो दूसरे राजा बन रहे हैं उनको आप अनुभव से उनकी बुराइयां काटने का तरीका समझाएंगे, तब तो उनके दिल में आपके प्रति भी सम्मान आएगा, तब तो आप चक्रवर्ती राजा बनेंगे, सिर्फ अपनी बुराइयों का गला काटने से नहीं। अंतर समझ में आया? अब वो ठेका जबरदस्ती दे रहा है, बाबा जबरदस्ती ठेका दे रहा है, आपने अपनी बुराइयों का गला काटा, ये ठीक बात है, आप अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बने, ये बात ठीक है, परंतु औरों को भी राजा बनाओ, और भी राजा बने, तब तो आप चक्रवर्ती राजा बनेंगे। आपने प्रजा बनाई तो राजा बनेंगे, परंतु आपने राजाओं को बनाया, राजाओं को बनने में सहयोग दिया, तो आप चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अंतर समझ में आ रहा है? नहीं, नई बात बताता है ना बाबा। देखा कि इनको एक बात समझ में आ गई है तो फिर दूसरी बात चैप्टर पढ़ा देता है साथ में। याद के लिए अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है, उस समय उठकर अंतर्मुखी बन आत्म स्वरूप में स्थित होकर बैठ जाओ। सवेरे सवेरे उठो, अंतर्मुखी बन के क्या करो? आत्म स्वरूप में स्थित होकर बैठ जाओ। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, इस स्वरूप में स्थित होकर बैठ जाओ। कल बाबा ने इसको तीन रूप से बताया, कल बाबा ने तीन रूप से बताया। एक, मैं परम धाम से अवतरित आत्मा हूं, ये अनुभव करो। मैं कहां से आई हूं? परम धाम से अवतरित आत्मा हूं मैं। आज जैसे बाबा परम धाम से आकर ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके पाठ बजाते हैं, उसी प्रकार मैं भी इस शरीर में आकर पाठ बजा रही। मैं कहां से आई हूं? परम धाम से आई हूं। मैं परम धाम से अवतरित आत्मा, ये मेरी गाड़ी है। दूसरा, अपने आप को इस शरीर से अलग आत्मा अनुभव करो, कि ये शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग। और तीसरी बात बाबा ने बताया कि अपने आप को अनुभव करो कि मैं निराकारी आत्मा, मैं निराकारी आत्मा। ये तीन बातें एक साथ स्मृति में लाएंगे तो अमृत वेले ऐसा, ये तीन बातों को स्मृति रख के ऐसा अनुभव करेंगे तो आप दे से न्यारा अनुभव करेंगे। और ये अनुभूति, ये अनुभव आपने यदि 2-4-5 मिनट कर लिया, इस 2-4-5 मिनट में 2-4-5 घंटे की नींद के बराबर आपकी एनर्जी बन जाए। मतलब आपने यदि जैसे 2-4 घंटे 5 घंटे नींद करना है और नींद करने का टाइम नहीं मिला है तो आप ये अनुभव करो तो 2-4 मिनट में ही, 2 मिनट किया तो 2 घंटे, 4 मिनट किया तो 4 घंटे, 5 मिनट किया तो 5 घंटे आपने ये अनुभव किया देह से न्यारे होने का, तो आपकी 5 घंटे की नींद का काम हो गया। जितनी आपको एनर्जी 5 घंटे में मिलती है वो 5 मिनट में प्राप्त कर सकते। तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले। ये कौन समझाते हैं? ये समझा कौन रहा है? अंतर्मुखी हो जाओ, बाहर से कुछ भी ना बोलो, अपनी आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर बैठो। बाप बच्चों से कहते हैं मुख से कुछ भी बोलो नहीं, राम राम शिव शिव, बाबा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, अच्छा बाबा, नो नीड। ये कुछ भी बोलने की जरूरत, कोई गीत गुनगुनाने की जरूरत, हाँ जी, हाँ। बाप बच्चों से कहते हैं मुख से कुछ भी नहीं बोलो, राम राम आदि तो बहुत कहते आए, परंतु उस कहने से भी मनुष्य पावन नहीं बन सकते। कितना राम राम रख दो, उससे कोई पावन थोड़ा बन सकता है। मनुष्य पतित से पावन तब बन सकते जब पतित पावन बाप की श्री मत पर चले। पतित पावन कहने से बाप याद आता है, बाप कहते हैं कि तुम बरोबर पतित थे ना, अब तुम पावन बन रहे हो, अब तुम पावन बन रहे हो। सतयुग में कोई पतित होता नहीं। 5000 वर्ष पहले जब भारत पावन था, भारत पावन था, तो एक ही धर्म था। बाप तो सुख की ही सृष्टि रचेंगे ना, बाबा तो आकर सुख की सृष्टि रचेंगे ना। भारत सुख धाम तो सुख धाम था, लक्ष्मी नारायण, राम सीता आदि के मंदिर सतयुग की, सतयुग त्रेता की निशानी। ये जो मंदिर बनाए हैं ये सतयुग त्रेता की निशानी है। किनके लिए कहा जा रहा है? ये भक्त बच्चों के लिए कि ज्ञानी बच्चों के लिए? इनके लिए कहा जा रहा है? तो किनके लिए कहा जा रहा है? ये भक्त बच्चों के लिए कहा जा रहा है। ज्ञानी बच्चों को ये बात नहीं कहेंगे, क्योंकि ज्ञानी बच्चे जानते हैं कि ना तो कोई राम हुआ था और ना ही ऐसे कोई 33 करोड़ देवी देवताओं के जो नाम रखे हुए ऐसे थे। ये तो भक्तों के नाम है, भक्तों को रोकने के लिए कि ये तुम्हारे मंदिर देवी देवताएं थे, 33 करोड़ देवी देवताएं थे, परंतु उनकी जो कहानियां नारद गणेश राम कृष्ण ये जो कहानियां लिखी हैं, ये कहानियां सारी गपोड़, ये गपोड़ कहानियां हैं। ऐसा कोई रावण नहीं हुआ, ऐसा कोई राम नहीं हुआ, ऐसा कोई कृष्ण नहीं हुआ, ऐसा कोई कंस नहीं हुआ, है नहीं? ये प्रतीकात्मक हद की बातें हैं, ये भक्ति की बातें हैं, भक्तों को लगे कि ये हमारी बातें हो रही। ये बात हमें समझनी है जी। कैसे क्या हो गया? ये कहानी लिख दी, आज बैठ करके डावल फिल्म फिल्म बना देते हैं। कैसे बनाते हैं? सच होता है क्या? मैंने कब कहा कि बंद करो? कल्प कितने होते हैं? 4 कल्प होते हैं कि 4 युग होते हैं? 4 युग होते हैं, कल्प तो एक ही होता है। हर कल्प में रामायण लिखी जाएगी, तो इस कल्प में नहीं, हर कल्प में रामायण लिखी जाएगी, और हर कल्प में शिव बाबा आकर समझाएगा, हर कल्प में शिव बाबा आकर समझाएगा कि ये रॉन्ग है। हर
मानता है पूरे वर्ल्ड के अंदर आप घूम लो, जो राम कृष्ण नाम है देवताओं के, ये मानते हैं, मानते रहेंगे।
जिन्होंने सच को जाना,
सच कितना एग्जाम यहाँ तक ही है, आप हमने यहाँ तक
भाई जी, जिन्होंने सच को जाना, मैंने सारी दुनिया का ठेका नहीं लिया, मैंने जान लिया तो मैं ये सच सबको समझा रहा हूँ ना। बाबा ने जाना, बाबा ने समझाया, बाबा की बात हमको समझ में आई, अब हमने सबको समझाना है कि ये गपूर कहानियां हैं। नहीं, मैंने कब कहा कि आपको मानो, देखिए जो दिखा रहे हैं उन विचारों को नहीं पता ना, उनको पता नहीं है कि शिव बाबा भी कोई है, उनको ये पता नहीं है गॉड इज ट्रुथ कोई और है,
सबको किसी बाबा है, सबसे प्रथम जो वही है सृष्टि के रचने के लिए या बनाने के लिए बनाने के लिए संपत्ति उनकी वो जैसे काम चल रहा है।
जैसे मेरे भाई आपने भी अभी तक ये नहीं समझा कि शिव बाबा और शंकर में अंतर है, नहीं समझ में आया, वरना आप तीन नहीं कहते भगवान, शंकर अलग है, ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है और ये तीनों पार्ट बजाने वाला दादा लेखराज अलग है। हाँ तो मतलब कहने का भक्ति की बात है, मतलब ये बात समझो, बाबा कहते हैं जो कहते हैं आप शास्त्रों को मानते हो, आपको हाँ मानते हैं, अभी परसों पहले दिन मुरली में था ना, कहो हाँ मानते हैं, ये शास्त्र भक्ति मार्ग के और ये है ज्ञान मार्ग, ये लाइन याद रखने वाली है ना। ये बात जिसको समझ में आ जाए कि ये दुनिया के जितने भी शास्त्र है ये भक्ति मार्ग की किताबें हैं, ये ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग में भक्ति मार्ग की किताबें नहीं चलती, ये अंतर अपनी बुद्धि में बिठाना है। ज्ञान मार्ग अलग है, भक्ति मार्ग अलग। आदि के मंदिर सतयुग त्रेता की निशानी है, ये भक्तों के लिए कहा जा रहा है ताकि वो कहें कि अच्छा ये हमारी रामायण और महाभारत के लिए कह रहे। बस सतयुग में बरोबर लक्ष्मी नारायण की डिनेस्टी थी, यही भारत था जिसमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज्य चलता है, जो अब फिर से स्थापन हो रहा है, अब फिर से बाबा आकर स्थापन करे, वो है नहीं अब, ना कोई सूर्यवंशी है ना कोई चंद्रवंशी है, अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी की स्थापना हो रही है, बन रहे हैं। इसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, बाबा कहते वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी दुनिया में किसी के पास नहीं, मैं ही आकर के सच बताता हूँ, वो तो लाखों साल करोड़ों सालों की बात करते हैं जबकि सारी बात ही सिर्फ 5,000 साल की, 1 सेकंड कम या ज्यादा नहीं है, तो लाखों करोड़ों साल सारे क्या हो गए, गपोड़े हो गए ना। जब सारे संसार का ड्रामा 5,000 साल का है उसके अंदर लाखों करोड़ों सालों की कहानियां सुनाना गपोड़े सुनाना हो गया ना। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी ये मनुष्य ही तो जानेंगे, अब ये बाबा आकर जो समझा रहे हैं वो सब मनुष्यों को समझाना है ना, मनुष्य नहीं जानते तो वो जानवर से भी बदतर कहा जाए, सच को जो नहीं जानेगा तो वो भगत ही ठहरा, भगत माना अज्ञानी, उसके पास ज्ञान ही नहीं है, ज्ञानी भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, नो डाउट। देखो भक्त बने, हमने भी भक्ति की तब तो हमें ये अब बाबा की बातें समझ में आई, परंतु भक्ति के कारण समझ में नहीं आई, भक्ति करने के कारण समझ में आए, जानवर से भी बदतर। अब जो बाबा का ज्ञान ना समझे तो वो जानवर से भी क्या है, बदतर है। बाप को जानने लिए कितने धक्के खाते हैं, बाबा को इस सच को जानने के लिए तो धक्के खा रहे थे, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुर्जाघर में जाओ, उसमें जाओ, उस मेरे भाई जा बाबा की लाइफ। भाई जी समझो कि यदि आपको सच जानना है, सारी दुनिया सच को जानने के लिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में भटकती रही, और उसके बाद उन्होंने कहा चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी रहे दूर के दूर। मतलब ये भक्ति का ही भजन है, ये ज्ञान का भजन नहीं है। भक्ति में वो गाते भी रहे कि हमने चारों तरफ चारों धाम की यात्रा कर रही कर ली फिर भी हम रहे दूर के दूर, हम भगवान से मिल नहीं सके। भक्ति करने से भगवान से हम मिल नहीं सके, परंतु हमारी लगन हमारी इच्छा देखकर भगवान ने स्वयं आकर अपना परिचय हमें दिया कि मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, ये पत्थर की मूर्तियां आपके बाप नहीं, तुम बाप के बच्चे बने हो, तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो। वो तुम आत्माओं का पिता कोई नहीं, ना राम तुम आत्माओं का पिता है, ना कृष्ण तुम आत्माओं का पिता है, कोई और भी आत्माओं का पिता नहीं हो सकता। एक मैं ही आकर ये सच तुम्हें समझाता हूँ कि मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। तुम बाप के बच्चे बने हो तो बाप अपना परिचय देते हैं, मैं तुम्हारा बाप कैसे हूँ। कभी राम ने बैठकर कृष्ण ने बैठकर किसी ने भी नहीं बताया कि मैं तुम्हारा बाप कैसे हूँ। किसी ने भी 33 करोड़ देवी देवताओं की कहानियां लिख के रख दी हैं, उनमें से किसी ने नहीं बताया कि मैं तुम्हारा बाप कैसे हूँ। बस हमने उनके आगे कहते रहे और समझते रहे, अपने आप में खुश होते रहे। पहले परिचय नहीं था, भक्ति कर रहे थे तो हमें परिचय नहीं था, तो इसका परिणाम क्या हुआ, हम आर्फन बन गए, हम नास्तिक बन गए। किसे कहते हैं आर्फन, अनाथ। हम गाते रहे राम तू मेरा बाप है, कृष्ण तू मेरा बाप है, हनुमान तू मेरा बाप है, फलाना तू मेरा बाप है, फलाना तू मेरा बाप है, इतने सारे बाप बनाए, परंतु उनमें से कोई भी बाप हमारा नहीं बना, ओरिजिनल नहीं था। तो हम अनाथ थे ना, हम बिना बाप के थे ना, तो हम अनाथ थे ना। फिर बाबा ने दूसरा शब्द दिया नास्तिक, हम ना बाप को जानते थे और ना उसका कहना मानते थे, तो हम नास्तिक थे। हम अपने आप को समझते थे कि हमने पूजा की है मंदिर में जाकर, हम आस्तिक है। परंतु अब हमें समझ में आया हम पूजा करते हुए क्या थे, नास्तिक, क्योंकि हमें पता नहीं था। निधड़के बन जाते हैं, अब तुम बाप के बने हो, बाप से वर्षा ले रहे हो, अब तुमने बाप को पहचाना, अब तुम्हें सच समझ में आ रहा है, और अब जब सच समझ में आएगा तब तो उस बाप से वर्षा लेंगे। कोई कम बात है क्या, 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की राजधानी मिलना, इतना बड़ा वर्षा कभी भक्ति में नहीं मिला। भक्ति में तो सिर्फ हमने तेरी कथा सुन ली, अब तो मेरी बीमारी ठीक कर दियो, अब मेरे दुख को दूर कर दियो, अब तेरा काम है, मेरा काम हो गया, मैंने आकर के तेरी कथा सुन लिया। 21 जन्म स्वर्ग की राजधानी मिलती है, कोई कम बात है क्या। लक्ष्मी नारायण को 5000 वर्ष और राम को लाखों साल हो गए, करोड़ों साल हो गए, कह दे कुछ भी कह दे, वेद कब लिखे गए, लाखों साल पहले लिखे गए, तो भटक रहे हैं ना। जबकि वेद कब लिखे गए, आज से 2000 साल पहले, रामायण महाभारत कब लिखी गई, आज से 2000 साल पहले, तो अपने आप कहानी बदल जाती है, फिर से हिस्ट्री रिपीट होती है 5000 साल वाली। बाप समझाते हैं मेरी श्रीमत पर चलो, अंतर्मुखी बनो, बाहर मुखी मत बनो। अब इस समय है घोर अंधियारा, कुछ भी नहीं जानते कि सच क्या है। झूठ को ही सच समझे बैठे, रस्सी को ही सांप समझे बैठे, तो घोर अंधियारा है ना। अब सच तो बाप ही आके बताएगा, ज्ञान मार्ग की स्थापना तो बाप ही आकर करते हैं ना, सच्चा ज्ञान तो बाबा आकर देते हैं। इनको रात कहा जाता है, सच नहीं जानते तो कहां है वो, अज्ञानता की अंधेरी रात में है। अभी सवेरा आ रहा है, कलयुग अंत को घोर अंधियारा। अब ये चारों तरफ भक्ति जितनी कर रहे हैं, ये अज्ञानता की क्या है, घोर अंधियारी रात है। सतयुग आदि को घोर सोजरा कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ संगम पर। मैं आता कब हूँ, संगम पर, जबकि सभी मनुष्य पतित, सारे मनुष्य क्या है, पतित। अभी तुम बच्चों को सदा सुख का वर्षा देने आया हूँ, विनाश सामने खड़ा है, विनाश सामने खड़ा है, बहुत गई थोड़ी रही, इसलिए आप जल्दी जल्दी पुरुषार्थ कर बेअज के बाप से वर्षा लो, जैसे सब ले रहे हैं, सब पुरुषार्थी हैं। अब सबको स्वीट होम वाणी से परे जाना है, वे है हम आत्माओं का घर, वो है हम आत्माओं का घर, निर्वाण धाम। धाम में कोई एक नहीं रहते, जितनी भी जीव आत्माएं हैं वे सभी शरीर छोड़ जाएंगे अपने घर बाबा के पास। वे है निराकारी झाड़, वो क्या है, निराकारी झाड़। जैसे चित्र में भी झाड़ दिखाया जाता है, चित्र में भी झाड़ दिखाया है ना, वो हम आत्माओं का घर। दो झाड़ है, एक झाड़ कहाँ है, हाँ जी झाड़ कहाँ है हमारे, अरे भाई कहाँ चले गए हो, झाड़ झाड़ सुना है कभी, किसे कहते हैं झाड़, कोई चित्र देखा है झाड़ वाला, कहाँ है ये एक झाड़ है, दूसरा झाड़ कहाँ है, कहाँ है पीछे, कहाँ है दूसरा झाड़, कहाँ है, कहाँ है, मैं ये पूछ रहा हूँ, यहाँ का क्लासरूम में कहीं लगा हुआ है झाड़ का चित्र, दूसरा चश्मा ना डाल के लाए आज, हाँ ये रहा साइड में देखो परमधाम, इधर देखो ये रहा, चश्मा नहीं ना आज इसलिए अच्छी तरह नहीं दिखता, हाँ जी कहाँ है झाड़, ये झाड़ कैसे है, ये नहीं ये झाड़ कैसे है ये बताओ ना, क्या दिखाए बताओ, कौन सा झाड़ है, इस एक ही चित्र में दो झाड़ है, एक ही चित्र में दो झाड़, एक झाड़ जहाँ ब्रह्मा सरस्वती बैठे हुए हैं उसके नीचे झाड़ है, एक ऊपर झाड़ है आत्माओं का झाड़। ऊपर सबसे ऊपर बीज है परमपिता परमात्मा, फिर लक्ष्मी नारायण की आत्मा, फिर सारी आत्मा, वो है आत्माओं का झाड़, और ये है मनुष्यों का झाड़। अंतर समझना है नहीं? आत्माओं का घर झाड़ दिखाया है, वो है आत्माओं का घर, वो घर है आत्माओं का। शांति धाम में फिर हम आएंगे, सुख धाम फिर हम आएंगे, सुख धाम, तो वह है आत्माओं का झाड़ और यह है मनुष्य सृष्टि का झाड़। ये शिव बाबा ने समझाने के लिए बनाए बनवाए, ठीक है कि नहीं, तो क्योंकि सच तो समझाना था ना, वरना तो पता ही नहीं परम धाम। बाबा ने सारे चित्र बनवाने के लिए डायरेक्शन दिए, बाद में करेक्शन करवाए कि ये अभी कमी है, इस कमी को अब ठीक करो। अभी 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, कलयुग के बाद सतयुग जरूर आता है, द्वापर के बाद कलयुग जरूर आएगा। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग आता, जब दो कल्पों का संगम होता है तब मैं आता। एक कल्प खत्म होने वाला है और दूसरा कल्प शुरू होने वाला है। पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ, जब तक नई दुनिया स्थापन हो जाए तब तक इस पुरानी दुनिया में रहना पड़े। पुरानी दुनिया में कब तक रहना है? जब तक नई दुनिया स्थापन हो नहीं जाती। जब तक नया मकान बन ना जाए तो कहाँ रहना पड़ेगा? तब तक पुराने मकान में रहना पड़ेगा ना। जब नया मकान बन जाएगा तब पंडित को बुलाएंगे, मुहूर्त कराएंगे, तब घुसेंगे ना, है ना? तो ब्राह्मणों की तो जरूरत है ना, बिना ब्राह्मण के नए मकान में कैसे घुस सके? पहले ब्राह्मण बनो, फिर नई दुनिया के मालिक बन सके। फिर जब नया बन जाए फिर पुराने को तोड़ा जाता है। ये भी पुरानी चीज है। मतलब यदि आपने अपने मकान को तोड़ना है तो दो तरीके होते हैं ना, एक साइड से तोड़ते जाओ बनाते जाओ। दूसरा तरीका होता है कि किराए पर ले लो और फिर तोड़ के बना लो। अब दो तरीके चाहिए तो शिव बाबा ने इसलिए किराए का मकान लिया और फिर सबको समझाया, फिर सबको तैयार किया। परंतु बाबा आकर जो मकान बनवाते हैं वो इस दुनिया में रहते रहते सारी तैयारी करवाते और नई दुनिया के मकान बनवा कर जाते हैं। वो जो बंकर्स होंगे वही नई दुनिया के मकान बनेंगे जहां वो सुरक्षित रहेंगे, फिर आकर नए मकान बनाएंगे। सुखदाता इसके विनाश के लिए ये है महाभारत। इस दुनिया का विनाश करने के लिए अब होगी महाभारत, ना कि वो हुई थी महाभारत। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, आत्मा ही समझती है। जिस्मानी नॉलेज भी आत्मा सीखती है ना। आत्मा कहती है मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं सर्जन हूँ, मैं फौजी हूँ। कौन कहती है? आत्मा कहती है ना, ये शरीर तो नहीं कहेगा ना। आत्मा की नॉलेज ना होने कारण अपने को शरीर समझते रहे और फिर शरीर के पिता को या शरीरधारियों को भगवान समझते रहे। अब समझ में आया कि आप आत्मा हो और मैं आप आत्माओं का बाप परम आत्मा हूँ। वो आपके ना बाप थे, ना हैं, ना हों, वो तो टेम्परेरी आपने बना रखे। सच समझ में आएगा तो हम परमात्मा को पिता कहेंगे ना। हम पत्थर की मूर्तियों को, किसी देहधारी को अपना पिता नहीं कहेंगे। आत्मा ही संस्कार ले जाती है। तुम बच्चे समझते हो, शिव बाबा हम आत्माओं को समझा रहे हैं। हम आत्मा ये पुराना शरीर छोड़ फिर नया शरीर जाकर लेंगी। अभी हम शाम हैं, फिर हमें क्या बनना है? सुंदर बनेंगे। सुंदर से शाम बनते हैं कितने जन्म में? सुंदर से शाम कितने जन्म में बनते हैं? 84 जन्म। और शाम से सुंदर बनते हैं एक सेकंड में काले से गोरा बन जाते। फिर बाबा काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाए, गोल्डन एज का स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देगा ना। बाप तो ऊंच से ऊंच है, कहते हैं बच्चों के लिए वैकुंठ की सौगात लाए हैं। हथेली पर बहिष्ठ लाया हूँ। सेकंड में तुम साक्षात्कार कर लेते, सेकंड में साक्षात्कार कर लेते। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, जरूर ब्रह्मा के बच्चे हैं और शिव बाबा के पोत्र। और पहली बार कल भी कहा तर पोत्रे भी, पर पोत्रे भी, पर पोत्रे तर पोत्रे। तुम कहते हो हम शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, वही सर्व का सदगति दाता है, राजयोग सिखलाते हैं, निराकार कैसे सिखलाए। जिसका शरीर नहीं है वो अब राजयोग कैसे सिखलाए। इसलिए ऑर्गन्स किराए पर लेने पड़ते। इस दादा लेख राज के शरीर को किराए पर लेते हैं, सृष्टि चक्र की नॉलेज देते हैं, जिसको परम आत्मा सुप्रीम सोल कहते हैं उसकी ही सारी महिमा है। ज्ञान का सागर पतित पावन वो है तो जरूर आना पड़े। तुमको भी मास्टर सुप्रीम अथवा पावन बनाते, अथवा पावन बनाते। वे है बेहद का बाप जिसको सभी भगत बुलाते हैं, सभी भक्तों का बाप वो भगवान है, परम पिता परम आत्मा। अगर उनको सर्वव्यापी कह देते तो फिर वर्षा कैसे मिलेगा। मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते, जिसका शरीर है उसे भगवान नहीं कह सकते। बाबा कहते किसी भी देहधारी को भगवान नहीं कह सकते, श्री कृष्ण को भी देवी गुणधारी मनुष्य कहा जाता है, भगवान नहीं। वो देवी गुणों वाला मनुष्य है, भगवान नहीं। वो है फर्स्ट प्रिंस राजकुमार, सभी उनको झूले में झुलाते हैं, शिव बाबा को कभी झूले में नहीं झुलाते, क्योंकि वो कभी बच्चा बनता ही नहीं। बच्चों को झूले में बिठाया जाए वो तो कभी बच्चा बनता ही नहीं। ये तो साक्षात्कार कराते हैं समझाने के लिए। साक्षात्कार किस लिए कराते हैं? समझाने के लिए। हम तुम्हारा बच्चा हूं, समझाने के लिए कहा जाता है, हम तुम्हारा बच्चा हूं, तुम हमको अपना वारिस बनाएंगे, कुर्बान जाएंगे तो मैं भी क्या करूंगा, हाँ बलियार जाऊंगा। पहले क्या करना है, शिव बाबा को अपना बच्चा बनाओ, हाँ मेरे पर बलिहार जाओ, मेरा कहना मानो, फिर मैं तुम्हारा कहना मानूंगा, बलिहार जाऊंगा। बलिहार जाते हो तो जैसे मैं तुम्हारा बच्चा हो गया, तुम मेरे पर कुर्बान जाते हो तो मैं तुम्हारा बच्चा हो गया। हाँ आज बच्चा बन गया, चलाकी है ना इसकी सारी, हाँ खिलाड़ी है रोजाना का नया। मैं तुम्हारा बालक हो गया, मनुष्यों में कितनी अंधश्रद्धा है, जहां तहां माथा टेकते रहते हैं, कहीं कोई पत्थर रख दिया सड़क पर तो उसी को भी माथा टेक देते हैं। अब वो कूड़ा पड़ा रहता था, वहां किसी ने उठा के शंकर की मूर्ति रख दी, सफाई कर दी, अब वहां पर भी एक थाली रख दी है सड़क के ऊपर, वहां पर भी मत्था टेक रहे हैं। जहां कूड़ा पड़ता था कूड़ा हटाने के लिए उन्होंने अब वहां क्या रख दिया, शंकर की मूर्ति रख दी, अब उसके आगे थाली रख दी, अब सारे वहीं जाकर जहां कूड़ा पड़ता था भावना है, हाँ पत्थर का भी नहीं, मिट्टी का शंकर उठा के रख दिया कहीं से, जहां तहां माथा टेकते रहते हैं। इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। वहीं गंध, जहां गंध पड़ा रहता था वहीं चप्पल दूर उतारते हैं, वहीं गंध में खड़े होकर के, गंध वाला थोड़ा साफ नहीं हुई इसी तरह, वहीं खड़े होकर के माथा टेक चप्पल दूर उतारते हैं, जहां पहले सारे घरों का कूड़ा पड़ता था। गुड़ियों की पूजा है ना, गुड्डे गुड़ियों की। नवरात्रि में बहुत गुड़िया बनाते बनाएंगे, उनका ऑक्यूपेशन का किसी को पता नहीं कि वो गुड़िया क्या करेंगी। चार छह भुजा वाली देवी थोड़ी होती है, तो चार भुजा वाली छह भुजा वाली ऐसी कोई देवी थोड़ा होती है और फिर तलवार आदि दे देते हैं। देवताएं हिंसक थोड़े होते हैं, देवियां इतनी हिंसा करने की तो नहीं सोचते होंगे ना। शास्त्रवादियों ने, जिन्होंने शास्त्र लिखे है ना, शास्त्र लिखने वालों ने देवी देवताओं को भी हिंसक बना दिया है। नेपाल में भी काली की पूजा पूछते हैं, फिर ऐसे तो ऐसे है थोड़े ही, मम्मा ऐसी काली जीव वाली होगी, लंबी चौड़ी लंबी जीव काली सी निकाल के खड़ी हो जाए, थोड़े ही है। मनुष्य तो मनुष्य ही होता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतनवासी, बस उनका और कोई चीज ही नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर केवल सूक्ष्म वतनवासी हैं और कोई चीज नहीं है कि जिनका ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र बनाया जाए। कोई चीज ही नहीं है। फिर आठ दस भुजा वाले कहां से आ गए? ये सब भक्ति मार्ग के अलंकार बनाते हैं, गपोड़े दिखाते हैं पैसे कमाने के लिए। इसलिए दिखाते हैं पैसा कमाने के लिए, कुछ तो चाहिए ना। फिर किस्म किस्म के अलंकार चित्र बैठ बना देते हैं, वहां है ही वहां ही देखो सुंदर श्री कृष्ण का मंदिर, वहां ही देखो सांवरे श्री कृष्ण का मंदिर। कारण तो चाहिए ना, कितनी अंधश्रद्धा है। आप भक्ति मार्ग खत्म हो, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होता है। बाकी समय तो थोड़ा है, सबको मरना तो जरूर है, पुत्र पोत्रे वारिस बनने नहीं, आपके बच्चे आपकी जायदाद के मालिक बनेंगे नहीं। हाँ विनाश, हाँ ज्ञान ही नहीं रहेगा कि संगम पर हमने राजाई के लिए ये पुरुषार्थ किया था, वहां तो पवित्र सृष्टि चल पड़ती है। वहां कैसी सृष्टि चलती है? पवित्र सृष्टि चल पड़ती है। यहाँ तुम जानते हो कि बरोबर हम बाबा की राजधानी के हकदार हैं, वहां ये पता नहीं रहेगा कि कौन से कर्म किए कैसे बने, ये सब भूल जाता है। वहां पतित होते ही नहीं जो पावन बनने के लिए गुरु की दरकार पड़े, गुरु की जरूरत पड़े। बाप पैर धोकर बच्चों को तख्त पर बिठाते हैं, गुरु चाहिए सदगति के लिए, गुरु चाहिए सदगति करने के लिए। वहां तो है ही सदगति, वहां तो होती ही सदगति, गुरु की दरकार ही नहीं रहती। स्वर्ग में गुरु की जरूरत नहीं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान में ना रहो। मैं आत्मा अभी डॉक्टर के रूप में हूँ, मैं आत्मा मजिस्ट्रेट हूँ, फिर ये शरीर छोड़ने के बाद पता नहीं क्या बनूंगा। हम इस शरीर द्वारा पढ़ते हैं, आत्मा ही इस शरीर के द्वारा पढ़ती, आत्मा ही सुनती है। ये समझने की बातें हैं ना, ना कि झूठी कहानियां, ना कि दंत कथा। भक्ति में जितनी भी कथाएं लिखी गई वो सब झूठी कहानियां लिखी गई, परंतु अब बाबा कहते जो मैं समझा रहा हूं वे अपने प्रकार का सच। बाप कहते हैं ये सारी दुनिया कब्रिस्तान होनी है, अब जागो, नहीं तो क्या होगा, सारे भंभोर को आग लगने के समय फिर हाय हाय करेंगे। अब नहीं जागे तो जब भंभोर को आग लगेगी तो हाय हाय करेंगे। परंतु कुछ कर भी नहीं सकेंगे, कुछ भी कर नहीं सकेंगे, तब काल खा जाएगा, त्राही त्राही करके रह जाएंगे, सजाएं भी बहुत खाएंगे। अभी हमें पापों का खाता खलास कर पुण्य के खाते को जमा करना, नए सिर 21 जन्मों के लिए जमा करना है। जमा होगा बाप को याद करने से, पुराना खाता चुक्त हो जाना चाहिए। ज्ञान कितना सहज है, तुम्हारी रोज कितनी कमाई होती है, जितना जो याद करते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराते हैं तो अथाह कमाई करते हैं, अनगिनत। वहां कोई गिनती थोड़ी होती है। अभी झोपड़ियों में बैठे हैं, फिर महलों में बैठेंगे, फर्क तो रहता है ना, झोपड़ी और महल में फर्क तो रहता है ना। झोपड़ी और महल में ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्थापन हो जाएगी तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। अभी की बात है ना, राजधानी की स्थापना हो जाएगी, फिर जिसने जितना जितना पुरुषार्थ किया सो किया, फिर तो विनाश हो जाएगा। इसलिए अब गफलत नहीं करनी चाहिए, सवेरे उठ याद में बैठ जाना चाहिए। जितना याद का चार्ट रखो, जितना याद का चार्ट रखो उतना अच्छा है, और फिर उतना ही ऊंच पद पाएंगे, शिव बाबा के गले का हार बनेंगे, शिव बाबा के गले का हार बनेंगे। दिल दर्पण में देखना है कि मैं लायक बना, मैं लायक बना। लक्ष्मी नारायण को वरने, लक्ष्मी नारायण को वरने के लायक बना हूं। सर्विस करते हैं, किस्म किस्म के फूल हैं, ये बागवान बाबा का ह्यूमन गुलशन है। कहेंगे देखो कुमारिका मनोहर, कितने अच्छे अच्छे फूल हैं, ये रतन ज्योत है। बाबा इस बगीचे को देखते हैं, बाबा इस बगीचे को देखते हैं, फिर उस बगीचे में जाकर फूलों को देखते हैं। बागवान जांच करते हैं फूलों की, तो बच्चों को फॉलो करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। नंबर 1-2 फूल कौन कौन है, नंबर 1-2 कौन कौन फूल है, ऐसा बनना चाहिए। 21 जन्मों के लिए राजाई पद पाना कोई कम बात थोड़ी है, अथाह सुख है, विश्व का मालिक बनना है। ये स्कूल है, उस जिस्मानी पढ़ाई के साथ ये रूहानी पढ़ाई करो। टीचर्स के हमेशा अच्छे मैनर्स होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, स्कूल में अंधविश्वास की बात, अंधविश्वास की बात। वहां बैरिस्ट्री एक्ट पढ़ते, इंजीनियरिंग पढ़ते, यहां तुम राजाओं का राजा बनने के लिए पढ़ते, वो तो डॉक्टर इंजीनियर बनते, और यहां तुम राजाओं का राजा बनने के लिए पढ़ते हो। सन्यासी तो कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, बस खेल ही खत्म हो गया। बेहद का बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे ये रस्म रिवाज, ये रस्म रिवाज क्या हुए, बच्चे ये अंतिम जन्म पवित्र रहो, तुम सर्विस कर सकते हो। वहां भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये भी गॉडली एजुकेशन डिपार्टमेंट है। तुम अपने आप को कौन हो, तुम बच्चे हो राज ऋषि, राज ऋषि। वे तो घर बार छोड़ देते हैं, तुम घर में रहते सारी दुनिया का त्याग करते हो। तुम घर में रहते सारी दुनिया का त्याग करते हो, तुम्हारी बुद्धि में अब नई दुनिया है जो बाप ही बनाते हैं, इसलिए बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो अर्थात मेरी श्रीमत पर चलो, मेरी मत पर। ये पुरानी दुनिया क्लास हो जाएगी, ये रूहानी कॉलेज अथवा हॉस्पिटल भी बहुत बड़ा है जिसमें जिससे तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। घर घर में तुम ये हॉस्पिटल अथवा कॉलेज खोल सकते हो, इसमें खर्चा कुछ भी नहीं, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर 1, सवेरे सवेरे उठकर याद में जरूर बैठना है, इसमें गफलत नहीं करनी है। पुण्य का खाता जमा करना है, एम और जस्ट को बुद्धि में रख अच्छे पारस। तो एम ऑब्जेक्ट है हमारा स्वर्णिम दुनिया के लायक बनना, वो हमें पूर्ण अपने में 63 जन्मों तक के लिए परमानेंट लिख देना। रूहानी पढ़ाई जरूर पढ़नी है, अंतर्मुखी होकर रहना है, वरदान है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता को जानकर उसे कार्य में लगाने वाले सर्व विशेषता संपन्न भव, सब विशेषताओं से संपन्न बनो। और बाबा कहते ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को जानकर अपने उन्हें कार्य में लगाओ तो विशेषताओं से संपन्न बन जाएंगे। ब्राह्मण के नियम प्रमाण संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई न कोई विशेषता मिली हुई है, चाहे माला का लास्ट दाना हो, इसमें सुपरहिट तो पहले से ही बने ना। तो ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहचानो और उसे कार्य में लगाओ तो और भी विशेषताएं स्वतः आती जाएंगी। एक के आगे बिंदी लगाते कार्य करते, एक के आगे क्या लगानी है बिंदी, तो विशेषताएं बढ़ती जाएंगी, संपन्न बन जाएंगे। स्लोगन है मन मना भाव के मंत्र की सदा स्मृति रहे कि मैंने अपने मन को बैठकर समझाना, मन का भटकना बंद हो जाएगा, मन का भटकना बंद हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क, यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम।